खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, इससे पहले कि उस खुदावंद के जिंदा और मोहतबर कलाम में से अपनी तरबियत और नसीहत हासिल करें आएं, अपनी रूहों की तरक्की के लिए, अपनी रूहों की तामीर के लिए, अपनी रूहों की गुज़ा के लिए खुदावंद के हुजूर झुक जाएं। और शख्सी तौर पर आपका जो भी मसला है, जो भी फिक्र है, जो भी परेशानी है, उस खुदावंद के हुजूर रखेंगे और उन सब फिक्रों को खुदावंद पर छोड़ते हुए खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद अपने कलाम की रोटी से हमें सेर कर, क्योंकि खुदावंद कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद कहता है कि आसमान के परिंदों की तरफ, उन चिड़ियों की तरफ नज़र करो और उनमें से एक भी ज़मीन पर नहीं गिरती मेरी मर्जी के बगैर, जिनकी कदर और जिनकी कीमत 5 पैसे से कम नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन तुम्हारी कदर उनसे कहीं ज़्यादा है। सो आएं उस खुदावंद को पुकारें। खुदा बाप, हम सब खाकसारी में तेरे हजूर आते हैं क्योंकि तू ही दिलों और गुर्दों को जांचने और जानने वाला और हमारी राहों और हमारी जिंदगियों से वाकिफ़ है। तू हमारे सारे मसलों से वाकिफ़ है। सो खुदावंद, आज हमें अपने कलाम, जो तेरा जिंदा कलाम है, उस पर सुनने की, यकीन करने की कुव्वत और ताकत बख्श। और हम ईमान रखते हैं, लेकिन हमारी बेएतकादी का वो उन तमाम जिंदगी के हिस्सों में जिसमें हम शकी हैं, खुदावंद उन शकों को दूर कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो आज हम तीसरे बाब को शुरू करेंगे। खुशी की बात है, इफिसियों 3 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे और हमने दूसरा बाब मुकम्मल कर लिया, खुदा का शुक्र है। सो आज हम तीसरे बाब को शुरू करेंगे और इस तीसरे बाब में हम जो बातें देखेंगे, जब हम इसकी फरिश्त देखते हैं तो इस फरिश्त में तीसरे बाब के जो हमें मजमून नज़र आते हैं उनमें क्या बातचीत हो रही है कलीसिया के बारे में, उस अजीम पोशीदा भेद के बारे में जो फरिश्तों से और तमाम कौमों से और वक्तों से क्या था, छुपा हुआ था, और फिर पालूस की दुआ को देखेंगे तीसरे बाब में कि वो दुआ करता है कि खुदावंद अपने पढ़ने और सुनने और मानने वालों को हिकमत और दनाई दे ताकि तेरे कद और तेरी चुड़ाई और लंबाई और गहराई को जाने। सो ये तीन बड़े मजमून इस तीसरे बाब में हमें नजर आएंगे और फिर इस बाब में हम जो करदार देखेंगे, यानी कि जो लोग, जो करदार हमें नजर आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात होगी, खुदा बाप के बारे में बात होगी, पालूस रसूल अपने बारे में बात करेगा और रूहुल कुद्दस की कुदरत के बारे में, और इसका जो नतीजा निकलेगा वो अल्लाह ही भेद की क्या होगी, समझ होगी। सो इन बातों को हम देखेंगे और इसमें जो कलीदी बात है, जिसे कहते हैं कि कुंजी राज की जो बात है, वो क्या है, खुदा का मुकाशफा, खुदा का वो भेद जो अजल ही से हर एक से पोशीदा था, खुदा ने जाहिर किया। सो इफिसियों 3 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे और यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसू का कैदी हूं, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचे मैंने उसका पहले मुख्तसर हाल लिखा, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यसू में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास में शामिल, मीरास में शरीक और बदल में शामिल और वादा में दाखिल हैं, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, इस खुशखबरी का खादम बना, जो मुझ पर सब मुकस्सों में से छोटा, जो मुझ पर जो सब मुकस्सों में से छोटा, छोटों से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए, उस अजली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यसु में किया था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस हिस्सा को पहली 11 आयात को पढ़ने का मकसद यही है कि हमें पूरी तस्वीर नजर आ जाए कि पालूस रसूल बात क्या कर रहा है, उस भेद के बारे में, उस राज के बारे में जो फरिश्तों और आसमान की हुकूमतों और कुदरतों और देखी और अनदेखी तस्वीरों से नावाकिफ था, जिसके बारे में पहले किसी को कोई भेद नहीं था। ये बाप जो तीसरा बाप है, इसमें पालूस रसूल उन राजों को बयान करेगा जो आपके लिए, मेरे लिए और उस और के लोगों के लिए क्या था, भेद था और अब भी बहुत सी नस्लों के लिए भेद है। आज हम पहली आयत में से चंद एक लफ्जों पर गौर करेंगे। पहली आयत में लिखा है, पालूस कहता है, इसी सबब से मैं पालूस जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसु का कैदी हूं। जब भी हम उर्दू जबान में लफ्ज देखते हैं इसी सबब से, तो उसके पीछे कोई सबब है, उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कोई मकसद है। पालूस रसूल जो सबब, जो मकसद, जो वजह यहां पर लिखता है, जब वो कैदखाना में है, कैदखाना में बैठे हैं, और उसके कैदखाना में जाने की वजह क्या थी, उसने कोई चोरी नहीं की, क्योंकि कैदखाना में या जेल खाना में इसीलिए किसी को डाला जाता है आज के दौर में या आने वाले या माजी में, कि कोई ना कोई वजह है, क्योंकि ये निज़ाम इसीलिए कायम किया गया था कि जब किसी कैदी को या किसी को मुजरिम ठहराया जाए उसमें कोई गलती पाई जाए। तो पालूस रसूल का जी जो जेल में जाने की वजह थी, वो उसने चोरी नहीं की, उसने झूठ नहीं बोला, उसने किसी को फरेब नहीं दिया, उसने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की। उसका कैदखाने में जाने का जो सबब था वो क्या था, मसीह की खुशखबरी। ये उस दौर में और आज के दौर में भी बहुत से लोगों के लिए मसीह की खुशखबरी क्या है, ऐसे है जैसे कि एक धमकी है, जैसे कि खतरनाक बात है। आज की दुनिया में अगर हम किसी पैगाम को देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ऐसी बात को कहें कि ये गलत है, तो एक मिनट में वो फैल जाती है। लेकिन खुशखबरी का पैगाम देते हुए जब हम पैगाम देते हैं, तो बहुत दफा लोग खौफ में, बहुत दफा लोग इनकार करते हैं, रजिस्ट जिसे कहते हैं, के धुतकारते हैं, कहते हैं कि नहीं। पालूस रसूल यहां पर कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, वो अपनी हालत, अपना नाम, अपनी जिंदगी के बारे में बयान करता है कि मैं क्यों कैद खाना में हूं। चोरी नहीं, गुनाह कोई नहीं किया, सिर्फ ये बात कि मसीह की क्या कर रहा हूं, खुशखबरी दे रहा हूं, और इसी सबब से वो कैद खाना में था। जब हम अमाल की किताब को आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि हर रोज हम जो बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो हम पालूस की जिंदगी में से गौर करेंगे। तो सबब यहां पर क्या है कि मैं कारखाना में हूं क्योंकि मैंने मसीह का पैगाम दिया। पैगाम क्या था, कि यीशु मसीह खुदा का जिंदा बेटा है, यीशु मसीह खुदा का जिंदा बेटा है। ये पैगाम आपको याद होगा कि सुबह की इबादत में हमने पिछले दिनों में सीखा था कि जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बाज एलिया, बाज कहते हैं कि यर्मिया नबी, बाज कहते हैं कोई नबियों में से नबी जी उठा है। तो पतरस ने दलेरी से क्या कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, निजात दहिंदा है, छुटकारा देने वाला है। सो पलूस का ये पैगाम था, पैलूस का ये पैगाम था कि वो मसीह जो है, जिसके बारे में नबूवतें की गई हैं, जिसके बारे में बहुत से नबियों ने पहले से बता दिया कि वो आसमान से जमीन पर आएगा और निजात देगा। सो पालूस का ये पैगाम था, उसका पैगाम देखना चाहते हैं, आए मेरे साथ एक हवाला निकालें। गालबन पहला करंथियों, उसका 15वां बाप, यहां पर पालूस रसूल का बड़ा वाजिया और सादा पैगाम नजर आता है कलीसियाओं के लिए, हुकूमतों के लिए, बादशाहों के लिए, नौकरों के लिए, गुलामों के लिए, गैर कौमों के लिए, किसी भी जुबान, किसी भी रंग, किसी भी कबीले से, कोई भी खानदान है, उन सब के लिए पालूस का ये पैगाम था। और यहां पर दूसरा, पहला करंथी उसका 15वां बाब पहली 3 आयात में पालूस रसूल का जो पैगाम है, वो पैगाम क्या था, कहता है, अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिली है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो खुशखबरी मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना फायदा हुआ। तीसरी आयत में कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये पैलूस रसूल का पैगाम था कि वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, जो इस बात की तरफ इशारा थी कि तुम सब गुनाहगार हो, तुम्हें निजात दहिंदा की जरूरत है। दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये इस बात की तरफ इशारा थी कि यीशु मसीह वाहद वो शख्सियत है जिसने कब्र पर, मौत पर फतह पाई है, उसकी मानद ना कोई हुआ है, ना होगा और ना कोई है। और उसी खुशखबरी पर पालूस रसूल ने बहुत सी कलीसियाओं को बहुत से इलाकों में जाकर ये पैगाम दिया, और जब उसने ये पैगाम दिया तो उसे कैद खाना में डाला गया। इसके बारे में हमें इमाल की किताब में जिक्र मिलता है, आगे चलकर हम देखेंगे, और पालूस रसूल यही बात करते हुए नजर आता है। पालूस रसूल को जब हम देखते हैं इमाल 26वें बाप में, 26वें बाप में पालूस रसूल इसी बात को जब करते हुए नजर आता है कि वो कैद खाना में, अगरपा बादशाह था उस वक्त का, जो बादशाह था रूमी हुकूमत का, वो उसके सामने खड़ा है, जैसे अदालत लगी होती थी तो वो उसके सामने खड़ा है, उससे पूछ रहे हैं कि तेरा जुर्म क्या है, तूने क्या किया है, कोई मजहबी काम किया है, जिसके मजहबी कोई ऐसा जुर्म किया है। उसने कहा कि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, किसी की चांदी नहीं चुराई, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बल्कि ये मेरा पैगाम है। उसका पैगाम क्या था, खुशखबरी कि खुदा ने मुझे गैर कौमों में भेजा है कि अंजील की मनादी करूं, अंजील की बिशारत दूं। जो गीत हम गाते हैं, बहुत पुराना गीत है, आजकल लोग उसे पसंद नहीं कहते हो, बहुत पुराना गीत है, लेकिन बहुत ही कुदरत से मामूर और सच्चाई से भरा हुआ गीत है ये। और वो गीत हर एक की रूह में उतरना चाहिए, जैसे कि हमारी रगों में खून दौड़ता है। और वो गीत कौन सा है, शायद आपको याद होगा, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। सो यही बात है, पालूस रसूल बादशाह के सामने खड़ा है, अपनी दलील पेश कर रहा है, उनको कलाम में से बता रहा है। और जब हम 29वीं आयत में देखते हैं, 28वीं आयत में, अगरपा ने पालूस से कहा, तू तो थोड़ी सी ही नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पालूस ने जब उसे भेद बताया, उस सच्चाई के बारे में बताया कि मैं कौन था, कहाँ से आया और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो उसने बादशाह को भी बातों बातों में पैगाम दिया कि तेरी भी निजात का बायस, बेशक तू बादशाह है, तेरी भी निजात का बायस और वसीला यीशु मसीह है। तो बादशाह उसे कहता, तू तो मुझे थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। 29वीं आयत, पालूस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं, पालूस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत सी, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, मेरी मानद हो जाएं सवाए इन जंजीरों के। जंजीरों में जकड़ा हुआ वो दलेर खुदा का खादम, खौफ से बरी, जिसमें कोई खौफ नहीं पाया जाता, उसे पता है कि खुदा उसके साथ है, वही खुदा जो पालूस का है आज हमारा भी है। उसे कोई खौफ नहीं मौत का, क्योंकि उसे पता है कि जब वो मरेगा तो उस जगह पर जाएगा जहां पर आसमान है, जो खुदा की हजूरी है। उसे कोई खौफ नहीं मौत का, और वो इस बात से वाकिफ है, यीशु मसीह ने कहा कि उससे ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को कत्ल कर सकता है, बल्कि उसका खौफ, उसकी इज्जत करो जो तुम्हारे बदन को जहन्नम में डाल सकता है। सो पालूस रसूल उसे नसीहत करते हुए कहता है कि मेरी दुआ, मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश, मेरी तो ये क्या है, दिल की आरजू है कि ना के तू बल्कि जितने लोग मेरी सुन रहे हैं, सब इस खुशखबरी के पैगाम के वसीला से उस निजात को पाएं सवाए इन जंजीरों के। सो इसी सबब से पालूस रसूल इफिसियों 3 बाब की पहली आयत में ये लफ्ज कहता है, इसी सबब से मैं, कौन का, कौन सा सबब, तुम जो गैर कौम वाले थे। इफिसस की कलीसिया में लोग ईमानदार पैदा नहीं हुए थे, मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, बुत प्रस्त थे, उनको उन्होंने कलाम सुनाया और उन्होंने जिंदगी पाई। इसी तरह हम भी पदेशी मसीही पैदा नहीं हुए थे, हमने भी किसी न किसी से, कहीं ना कहीं से खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना, तो आज यहां पर मौजूद हैं। वही बात फिर आ गई, किसी न किसी ने हमें पैगाम दिया, इसी सबब से आज हम यहां पर मौजूद हैं, इसी वजह से, इसी मकसद से। तो पालूस कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वाले, यहूदी नहीं, तुम गैर कौम वाले, कौन से, 12वीं आयत में कहता है, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से नावाकिफ और नाअमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मसीह से जुदाई थी, खुदा से कोई वाकफियत नहीं थी, तुम्हारी वजह से वो कहता है कि मैं। आज हम सब यहां पर मौजूद हैं, किस वजह से, आपके सबब से। आज यहां पर जो छत पड़ी हुई है, किस वजह से, हमें सर्दी से बचाने के लिए। आज मैं यहां पर सात समुद्र पार से उड़कर आया हूं, किस वजह से, आपके लिए, ताकि खुदा का कलाम सिखाया जाए। टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं मिसाल के तौर पर स्कूल में, किस सबब से, ताकि टीचर क्या करें, अपनी खिदमत करें और बच्चों को पढ़ा सकें। सो हर एक चीज का, हर एक बात का सबब है। सो हमें पालूस के नक्शे कदम पर चलते हुए इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है कि क्या मैं पालूस की तरह दलेर बनूंगी, बनूंगा, और यीशु मसीह का इकरार करूंगा और करूंगी कि वो निजात दहिंदा है, वही है जो वाहद मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो ये सबब था पालूस रसूल का। सो पालूस ने अपनी जिंदगी में अपने मौजूदा होने का, जिंदा होने का, पैदा होने का सबब और वजह जानी, हमें भी जानने की जरूरत है कि हम क्यों इस जमीन पर हैं। हम क्यों इस जमीन पर हैं, हमारी जिंदगी का मकसद खुदा हमारे लिए क्या रखता है, और आपके सवाल का जवाब आप खुद तलाश कर सकते हैं बाइबल मुकद्दस के इन वर्कों में, और या फिर खुदा से गुफ्तगू करते हुए कि खुदा मुझे बता मैं क्या करूं, मेरे लिए तेरी खिदमत क्या है, तू किस तरह मुझे चाहता है, चाहती है, मुझे चाहता है कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूं। आए हम दुआ करें, हर रोज हमारी यही दुआ होनी चाहिए, खुदावंद हमें बता कि हम किस तरह तेरे लिए जिंदगी बसर करें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, और तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह नाम इज्जत और जलाल पाए।